नमस्कार आदाब श्रोताओं, मोबाइल वाणी के बेहद लोकप्रिय और खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं वैसे मुद्दों के बारे में जिससे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है, वैसी खबरें जो जिंदगी की आपाधापी में हमसे छूट जाती हैं या खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाती। तो आइए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
मैं दीपक आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। भारत की 70% स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा सिर्फ 20 शहरों तक ही सीमित है। इसके अलावा 30% भारतीय हर साल स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च की वजह से गरीबी रेखा की जद में आ जाते हैं। PwC और CCI द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए कैसे एम हेल्थ भारतीय स्वास्थ्य सेवा उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता है नामक शोध पत्र के मुताबिक भारत में 30% तक लोग प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। इसमें कहा गया है कि भारत अकेले वैश्विक बीमारी का 21% बोझ झेल रहा है। इस पत्र में भारत के अंतर स्वास्थ्य सेवाओं के खस्ता हाल को दर्शाया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत की 70% स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा सिर्फ 20 शहरों तक ही सीमित है। साथ ही 30% भारतीयों के पास प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा तक पहुंच नहीं है। पत्र में कहा गया है कि भारत में प्रति 1000 आबादी पर केवल 0.7 डॉक्टर, 1.3 नर्स और 1.1 अस्पताल बेड हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिक तंत्र में वास्तव में कुछ आंकड़े चिंताजनक हैं, जिसमें जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी प्राथमिक इलाज से वंचित है। स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा की गुणवत्ता व सस्ती स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए नए तरीकों का लाभ उठाना जरूरी है। PwC इंडिया हेल्थ केयर के डॉक्टर राणा मेहता के अनुसार, अगर भारत में एम हेल्थ को पूरी तरह से अपना लिया जाता है तो देश में स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने की यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की आबादी करीब 1.3 अरब है और अगर हम 6-8% के एक रूढ़िवादी अनुमान लेते हैं तो अतिरिक्त 7.9-10.5 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच प्रदान करने की उम्मीद कर सकते हैं।
मैं प्रीति आपको जानकारी देने जा रही हूँ सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में। सूरत नगर निगम के साथ काम करने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ममता पटेल सूरत में पंडसेरा की कम आय वाले इलाके में 250 घरों का दौरा करती है। गर्मी हो, ठंड हो या हो बरसात, ममता की दिनचर्या नहीं बदलती। सूरत दक्षिणी गुजरात का शहर है जो हीरा उद्योग के लिए भी जाना जाता है। प्रत्येक घर में ममता जाकर पूछती है, क्या आपके घर में कोई है जिसे बुखार है? यदि जवाब हाँ है तो वह बुखार किट का उपयोग करके रक्त का नमूना लेती है और उसे मलेरिया परीक्षण के लिए भेजती है। यदि परीक्षण सकारात्मक है तो ममता मरीज को मलेरिया से निपटने के पूरे कोर्स के लिए गोलियां देती है। अगर परीक्षण में कुछ और आता है तो वह मरीजों को अन्य डॉक्टर के पास भेजती है। लोगों से बुखार के लिए पूछने के अलावा ममता घर में मच्छर पनपने के स्थानों का भी निरीक्षण करती है। ममता सूरत की सदिश जनित रोग निगरानी का हिस्सा है। यह देश में अपनी तरह का पहला रियल टाइम मस्कीटो सर्वेलेंस प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य बीमारी फैलने से पहले ट्रैक करना और रोकना है। यह कई अन्य नवीन संसाधनों के साथ सूरत नगर निगम को देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में अग्रणी बनाता है। अपने वास्तविक समय मच्छर निगरानी कार्यक्रम के साथ सूरत शहरी स्वास्थ्य और जलवायु रेगुलेशन केंद्र का एक ऐसा पहला केंद्र है जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रणनीति तैयार करता है और एक वास्तविक समय की शहरी सेवा निगरानी प्रणाली है जो स्वास्थ्य, पानी और ठोस अपशिष्ट से संबंधित शिकायतों पर निगरानी रखता है। इन संसाधनों के बूते शहर ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने में सफलता पाई है। 1994 में सूरत गंदगी और प्लेग फैलने के लिए कुख्यात था, लेकिन अब स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा है।
दोस्तों, मैं किशन और मैं आज आपको बताऊंगा असम में वेंकैया नायडू ने दिव्यांग जनों के लिए कौन सी योजनाएं शुरू की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कुछ दिन पहले असम में एक ऐसे समावेशी समाज का आह्वान किया है जहां दिव्यांगजनों से कोई भेदभाव नहीं हो। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगजन दिवस के अवसर पर गुवाहाटी में दीनदयाल दिव्यांगजन सहज योजना का शुभारंभ करते हुए नायडू ने कहा कि लोगों को दिव्यांगजनों के साथ संवेदना जतानी चाहिए, न कि सहानुभूति। इस योजना के तहत राज्य का हर दिव्यांग व्यक्ति अपने उपचार के लिए एक बार 5,000 रूपए की अनुदान राशि लेने के लिए हकदार होगा। उन्होंने कहा, आज हमें सोच प्रक्रिया को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ कानून बना देने भर से दिव्यांग जनों के हालात सुधारने में मदद नहीं मिलेगी। इस कानून के तहत सभी सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के बुजुर्ग एवं दिव्यांग सदस्यों के लिए अपने वेतन से योगदान देते हैं। उन्होंने अधिकारियों से सार्वजनिक जगहों को दिव्यांग एवं बुजुर्गों लोगों की पहुंच योग्य बनाने के लिए कहा, ताकि वे किसी भी अवसर से वंचित नहीं रहें। उन्होंने कहा कि इसके लिए समूचे समाज को उनकी हर संभव मदद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाला लाभ सभी लाभार्थियों को मिले। उन्होंने बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से भी आह्वान किया है कि वे ऐसे लोगों को आसान एवं सरल प्रक्रिया में कर्ज उपलब्ध कराए। इस अवसर पर असम के राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और समाज कल्याण मंत्री नाबा कुमार दौली भी उपस्थित थे।
तो दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ खास खबरें। अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो जरा हटके हैं, तो हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर और साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए अभी दबाएं नंबर 5। तो सुनना न भूलें हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरें जरा हटके।